हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल और आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बजाज फाइनेंस का जो क्वार्टर फोर का आज कॉन कॉल हुआ है उसको। तो 6 अप्रैल को कंपनी ने कॉन कॉल किया है, ये क्वार्टर फोर का अपडेट भी दिया है इन्होंने और कोरोना वायरस के चलते क्या सिचुएशन चल रही है उसके बारे में भी बताया है। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया था कि ग्लोबल इम्पैक्ट जो है वो 100 बेसिस पॉइंट से लेके 300 बेसिस पॉइंट तक का है, यानी कि 1 से 3% का इम्पैक्ट है जीडीपी पे और इतना वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं। सारी कंट्रीज स्ट्रॉन्ग फिस्कल स्टिमुलस देने में लगी हुई हैं इन दिनों और वो इन्होंने भी बताया है कि उससे हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें संभलें। आपको पता होगा कि आज जापान ने $1 ट्रिलियन का फिस्कल स्टिमुलस अनाउंस किया, जो कि 20% जीडीपी है उनका। तो बहुत ही बड़ा स्टिमुलस आया है जापान की तरफ से, बहुत ही शॉकिंग है और आई थिंक वो मार्केट्स को भी ड्राइव अप करेगा आज के दिन। मतलब आप देख सकते हैं डाउ जोन्स वगैरह, इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 6 तारीख की रात को, तो डाउ जोन्स वगैरह 5.5% ऊपर चल रहे हैं। एंड आई होप कि कल यानी कि 7 तारीख को जब ये वीडियो पोस्ट हो जाएगी तब भी आप देखोगे कि इंडियन इंडाइसेस भी परफॉर्म करेंगे। इंडिया पे आते हुए इन्होंने बोला है कि मानसून अच्छा है, मानसून अच्छा होने की उम्मीद है। इसके अंदर इनिशियली क्या हुआ था कि सबको लग रहा था सप्लाई शॉक होगा कोरोना वायरस के चलते, कि चाइना से सप्लाई बंद हो जाएगी, रॉ मटेरियल्स नहीं आएंगे। बट हुआ क्या है कि सप्लाई थोड़ी थोड़ी शुरू हो रही है और डिमांड शॉक आ गया है। बट इंडिया के अंदर क्या देख रहे हो आपकी सप्लाई और डिमांड शॉक दोनों है, क्योंकि लॉकडाउन में चली गई है कंट्री। इनको है कि ये जो 1 महीने का लॉकडाउन है प्रॉपर जीडीपी का पूरा नुकसान करेगा, ये जीडीपी हमने 1 महीने की बिल्कुल लूज़ कर दी है। इनको उम्मीद है कि जुलाई से डिमांड रिवाइवल आ सकता है इकोनॉमी के अंदर और सितंबर अक्टूबर से अगर वायरस कंट्रोल में आता है तो दे थिंक द इकोनॉमी विल बी बैक ऑन देयर फीट। आरबीआई की इन्होंने काफ़ी तारीफ करी है और वो इसलिए ही है क्योंकि रेट्स वगैरह रिड्यूस हुए हैं और मोरेटोरियम भी इन्होंने दिया है। मोरेटोरियम आपका ये नहीं है कि आप लोन चुकाओ ही मत, वो एक्चुअली आपको 3 महीने के लिए डिफर पेमेंट का ऑप्शन मिल रहा है। उसके अंदर भी ईएमआईस पे आप देखोगे, क्रेडिट कार्ड्स का तो मुझे 100% पता है इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। उसके बाद हम आते हैं स्पेसिफिकली बजाज फाइनेंस के ऊपर। ये इन्होंने स्टार्टिंग में जो इकनॉमी आरबीआई की बात करी थी, ग्लोबल बातें करी थी, अब से बजाज फाइनेंस कंपनी की बात करेंगे हम। लास्ट के 3 क्वार्टर इनके बहुत स्ट्रांग थे, बैलेंस शीट ग्रीव एट 35%, प्रॉफिट ग्रीव एट अ वॉपिंग 53%, एनपीए वगैरह बड़े अच्छे से कंट्रोल में हैं इनके और पहले भी थे। इन्होंने कहा कि हम पिछले 4 सालों में इतनी खराब 3 चीज़ों से निकल के आए हैं, जो कि थी डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, खराब जीडीपी ग्रोथ। तो इनको उम्मीद है कि ये इससे भी निकल आएंगे। इन्होंने इस बार एक्वायर किया 1.9 मिलियन कस्टमर्स, ये इस क्वार्टर का मैं बता रहा हूँ। एयूएम इनकी 2% से बढ़ के 1.47 ट्रिलियन रुपीज़ पे आ गई है। जो बजाज फाइनेंस खुद कंपनी है वो क्या कैसे इसको मैनूवर कर रही है इस समय, वो क्या कर रही है इन सिचुएशन में, तो इन्होंने बताया है कि ये कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हैं। इनका जो CAR है यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, वो 25% है, जो कि बहुत ही शानदार है, बहुत बैंक्स का इतना नहीं होता। ये प्रोविजनिंग भी और करना चाह रहे हैं बड़े अकाउंट्स में, क्योंकि इनको है कि थोड़ा एनपीए बढ़ सकता है हमारा। इनके पास जो डिपॉजिट्स हैं वो 21,000 करोड़ के हैं और रिटेल और कॉरपोरेट का जो उसके अंदर डिवीजन है वो 72:28 का रेशियो है। तो 72% रिटेल हो गया, 28% कॉरपोरेट हो गया डिपॉजिट्स में। इन्होंने क्लियरली कहा है कि इकनॉमी काफ़ी ख़राब कर रही है और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं बजाज फाइनेंस वाले कि डिमांड का रिवाइवल जुलाई तक हो जाएगा। इन्होंने अपनी प्रेजेंट सिचुएशन बताई है। तो 20% इनका जो बिजनेस आता है वो 2-व्हीलर और B2B सेगमेंट से आता है, जो कि लॉकडाउन के अंदर है, जो कि 0 हो चुका है इस समय। इनको ये भी है, इनका जो B2C का बिजनेस है जो कि 20% है वो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को ही लेंडिंग चल रही है उसके अंदर। MSME का जो सेगमेंट है उसके अंदर स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है, डिमांड विल बी हाई बट लेंडर्स वोंट कम बैक ईजिली, रिकवरी कुड टेक एनीवेयर बिटवीन 12 to 15 months। मॉर्गेज का जो बिजनेस है इनका वो 31% है, उसके अंदर ये कह रहे हैं कि बैंक से हमें प्राइजिंग प्रेशर तो है बट रिस्क इतना बड़ा चैलेंज नहीं है उसके अंदर, क्योंकि आप एक मॉर्गेज बैक्ड आप लोन देते हो। रूरल बिजनेस जो है उसके अंदर ये कह रहे हैं कि रिकवरी सबसे तेज होनी चाहिए, क्योंकि रूरल इकोनॉमी आप देखोगे शटडाउन नहीं हुई है और उसके अंदर COVID-19 के भी थैंक गॉड केसेस नहीं है। कॉमर्शियल बिजनेस इनका 4% है, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी 5% है, उसके अंदर भी रिकवरी तभी हो पाएगी जब मार्केट बढ़नी शुरू होएगी। और ये कहते हैं कि हम 50% से ज़्यादा तो किसी को सिक्योरिटी पे लोन भी नहीं देते, यानी किसी के पास 1 करोड़ के शेयर हैं तो उसको 50 लाख से ऊपर कभी मिलेगा भी नहीं। बट ऑब्वियसली मार्केट्स इतनी बुरी तरह करेक्ट हुई हैं कि इधर इनकी ये जो है इसमें बुक में स्ट्रेस आपको दिखेगा। इन्होंने ये भी कहा है कि एक्स्ट्रा लिक्विडिटी कैरी करेंगे नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए, जो कि कॉस्ट ऑफ क्रेडिट को बढ़ाएगी, बट ये इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पे आप सेफ खेलें, और सेफ खेलेंगे तो बचे रहेंगे, बचे रहेंगे तो फिर आप आगे जाके अगेन डोमिनेट कर सकते हैं, आप एक लीन मीन कंपाउंडिंग मशीन बन सकते हैं. दे हैव सेड दैट दे विल रिड्यूस ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर बाई 6-7% इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स. हायरिंग वायरिंग नहीं करेंगे और काफ़ी चीज़ों पर कटबैक करेंगे ताकि ऑपरेशनल कॉस्ट इनकी कम हो जाए. ये इंक्रीज करेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट इंफ्रा के अंदर. उसके बाद इन्होंने क्रेडिट कॉस्ट के ऊपर काफ़ी चीज़ें बताई हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लगी. तो ये तो आपको पता ही है कि इनका रिस्क ड्रिवन बिजनेस है, दैट थिंग इज अनअवॉइडेबल. इसलिए काफ़ी लोगों को मैं जानता हूँ जो फाइनेंस कंपनीज में इन्वेस्ट ही नहीं करते क्योंकि रिस्क काफ़ी होता है. कस्टमर जो इनके हैं सिवाय टू व्हीलर सेगमेंट के, उनको डिस्कस कर लेते हैं. रूरल जिनको ये देते हैं 3-4 लाख पर एनम उनकी इनकम होती है मोस्टली. अर्बन जिनको देते हैं उनकी 6-7 लाख पर एनम की इनकम होती है. 65% लोग जिनको ये देते हैं अपने आगे बेसिकली लोन्स वोन्स देते हैं, 65% आर सैलरीड, और 65% के जो सिबिल स्कोर्स होते हैं वो 750 से ऊपर होते हैं. और लास्ट 2 साल में इन्होंने क्या समझदारी करी अपने होम लोन के सेगमेंट में कि जिन लोगों की सैलरी 10-12 लाख रुपये पर एनम है उन्हीं को होम लोन दिया है. तो ये इनकी बड़ी समझदारी रही है कि काफ़ी केयरफुल रहे हैं. और हमने देखा है जब से ये कंपनी ग्रेट रिसेशन से बाहर आके इसने अपना बिजनेस मॉडल बदला, इसने अपना डिजिटाइजेशन को इम्प्लीमेंट किया ढंग से, इसने अपना डेटाबेस बहुत स्ट्रांग बनाया, तो तब से हमने देखा है इनके एनपीए वगैरह सब बड़े कंट्रोल में चल रहे हैं और इनका प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है. टू व्हीलर बिजनेस में इन्होंने यही कहा कि काफ़ी पेनफुल सिचुएशन है इस समय. अभी इनको है कि थिंग्स ठीक हैं, थिंग्स आर फ्लुएंट, अभी ठीक चल रहा है, बट लोगों ने कैश जमा करना शुरू कर दिया है और डिफ़ॉल्ट्स वगैरह होने के चांसेस हैं. इन्होंने एक और बड़ा अपने जो डेटा को माइन करके इन्होंने हमें चीज़ बताई है वो ये है कि 70% जो डिफ़ॉल्ट होते हैं वो नॉन डिजिटल होते हैं, यानी कि जो भी डिजिटल सोर्स से इनके पास जाता है या डिजिटल सोर्स से आता है उसके अंदर डिफ़ॉल्ट के चांसेस बहुत कम होते हैं. 70% जो डिफ़ॉल्ट्स हैं वो उन्हीं के हैं जो ऑफलाइन मोड से आ रहे हैं. इन्होंने उसके बाद 3 सिनेरियोज़ बताए हैं जो कि काफ़ी व्हाट्सएप ग्रुप्स पर सर्कुलेट हो रहे हैं. तो अगर लॉकडाउन 14 अप्रैल को खुल जाता है तो ये कह रहे हैं कि नॉर्मल हो जाएगा हमारा सब कुछ सितंबर तक. क्रेडिट रेट की जो कॉस्ट है वो इनकी इंक्रीज हो सकती है 50% से ईयर ऑन ईयर पे. लॉकडाउन अगर इनका 30 अप्रैल को खुलता है इकोनॉमी का तो फिर क्या होगा? तो अब थिंग्स जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नॉर्मल सितंबर तक हो जाएंगी पहले के सिनेरियो में, अब वो आप मान के चलो अक्टूबर में होंगी. और जो क्रेडिट की कॉस्ट है जो वो बढ़ेगी, वो इनको है कि फिर 60% ईयर ऑन ईयर बढ़ेगी बजाय 50% के. और इन्होंने एक तीसरा काफ़ी नेगेटिव, काफ़ी ग्रिम सिनेरियो दिया है, वो है कि अगर 15 मई को जाके लॉकडाउन खुलता है तो फिर क्या है इन्होंने कि सारे बिजनेसेस पे इम्पैक्ट आएगा. हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो नॉर्मल सी आएगी बिजनेस के अंदर, नॉर्मल सी विल रिटर्न बाय Q4. क्रेडिट कॉस्ट पे इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा आएगा, 80-90%. और ऑब्वियसली इसके चक्कर में RBI को एक वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग फाइनेंशियल सेक्टर में करनी पड़ेगी. तो हमें यह नहीं लगता कि 15 मई तक लॉकडाउन चलेगा. कुछ कुछ जगहों पे डेफिनेटली चल सकता है, जो वायरस के हॉटस्पॉट्स हैं जो कि आइडेंटिफाई कर रही है गवर्नमेंट काफ़ी एक्टिवली, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स लगी हुई हैं उसको आइडेंटिफाई करने में. बट जब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम कर रही है तो हमें अपना काम करके एक अच्छा स्टॉक चुनना है. हमें देखना है कि क्या जो बजाज फाइनेंस के अंदर 55% की करेक्शन आ चुकी है उसके बाद भी अच्छी कंपनी है, अच्छा स्टॉक है कि नहीं. तो बजाज फाइनेंस के अंदर है क्या इस समय? सारा फाइनेंस सेक्टर बहुत प्रेशर में है और बिल्कुल सही बात का प्रेशर आ रहा है. जब आपको पैसा ही वापस नहीं मिलेगा तो डिफॉल्ट्स बढ़ जाएंगे. बजाज फाइनेंस के अंदर भी एक्सपेक्टेशन यही है. मार्केट आपको पता है फ्यूचर डिस्काउंट करके चलती है, एंड मार्केट ने इसको काफ़ी अच्छे से पहले ही पीट दिया है क्योंकि मार्केट को है कि नहीं यार डिफॉल्ट विफॉल्ट बढ़ेंगे, अपना दूर रहो थोड़ा बेटर है. मेरी सलाह इसके अंदर यही है कि आपको अगर बाय करना है बजाज फाइनेंस को तो फिर आप इसको स्टैगर्ड मैनर में डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री पे बाय करिए. ये ऊपर जाने लगे तो मेरे ख्याल से आप बाय ना करिए. मुझे ये भी उम्मीद है कि बहुत लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं ये वाली, उनके पास पहले से बजाज फाइनेंस पड़ा है, तो इस कॉन कॉल के बाद मुझे अभी घबराने की बात नहीं लग रही है. अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभी मुझे कोई घबराने की बात नहीं लग रही है. इवन मेरे जो खुद के शेयर्स हैं, आई एम होल्डिंग ऑन टू देम. अगर सिचुएशन और ख़राब होती है, सिचुएशन और वर्सन होती है, तो फिर होपफुली मैं वीडियो भी बनाऊंगा. बट आपको भी ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है. तो आज की कॉन कॉल का मैंने आपको पूरा अपडेट दे दिया है. इफ़ यू वॉन्ट टू एड मोर शेयर्स यू कैन बाय देम ऑन अ डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी. Do not average upwards अभी कम से कम 1-1.5 महीने. 1-1.5 महीने हम सजेस्ट कर रहे हैं जिसको भी बाय करना है, जो नीचे आता है उसको लेते जाओ. अगर इसकी कोई वैक्सीन आ जाती है COVID-19 की या कोई दवाई आ जाती है, देन तो यू विल सी स्टॉक मार्केट रैलिंग लाइक एनीथिंग, तब सिचुएशन बदल जाएगी। करंट सिचुएशन के हिसाब से आप इनको खरीदिए शेयर्स को, बट नीचे के भावों में खरीदिए और होपफुली आपको काफ़ी पैसा बनेगा लंबे समय में, और लंबा समय भी हो सकता है 3-4 साल में रिकवरी आ जाए अगर फिस्कल स्टिमुलस ऐसा ही चलता रहा कंट्रीज़ की तरफ से। तो आप होप कर सकते हैं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर तक, जब तक वैक्सीन आएगी, तब तक मार्केट्स अपने ऑल टाइम हाई पे वापस खड़ी होंगी। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे इनडोर्स, स्टे सेफ, और होपफुली ये टफ टाइम से हम बहुत जल्दी निकलें सब लोग बाहर, और हम सब वापस अपनी लाइफ नॉर्मल, हमारी भी लाइफ में नॉर्मल सी वापस आए, जैसे बजाज फाइनेंस बहुत बार कह रही है कि नॉर्मल सी कब तक वापस आएगी। तो गाइज प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे इनडोर्स, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।